صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. الحمد لله ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ، حج کا بھی، عید کا بھی، اور سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ ہم سب کے لیے نیکیوں کا ایک اور موقع آ رہا ہے. جیسے رمضان نیکیوں کا موسم ہوتا ہے نا، اسی طرح بالکل یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، یہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، اور ان میں بھی اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے جیسے کہ رمضان میں ہوتا ہے. تو چونکہ نیکسٹ منتھ ہمارا سیشن جو ہے وہ اس وقت آنا ہے جس وقت کہ آلریڈی یہ دن گزر چکے ہوں گے، اس لیے آپ کو ابھی سے ان دنوں کا بتا دوں، اور آپ ان کے لیے ابھی سے یعنی تیاری رکھیے. یہ سمجھ لیں کہ ہمیں رمضان کے بعد ایک اور چانس مل رہا ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا بھی، اپنی جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کا ازالہ کرنے کا بھی. ایک دفعہ دوبارہ ہم ریفلیکشن کر سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں جو بھی عہد کیے ہیں کس حد تک ان کو نبھا رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہم نے نیت کی تھی نا کہ ہم نے یہ چیز چھوڑنی ہے یا ایک کوئی اچھی چیز اپنانی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہم دوبارہ ذرا دیکھ لیں گے کہ ہم نے کتنا ان کو پورا کیا. اور ابھی کیونکہ 2 مہینے ہی گزرے، تو ان 2 مہینوں میں کیا رزلٹ رہے. اور یہ دن اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، کسی دن کا عمل بھی اللہ کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے. یعنی اتنے زیادہ یہ دن اہم ہیں. آپ یہ سوچیں کہ لوگوں نے پھر پوچھا کہ جہاد بھی نہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اور واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا. یہ مسلم میں بھی حدیث ہے اور بخاری میں بھی، دونوں میں آپ کو ملے گی. یعنی جس انسان کا ایسا عمل ہو، اس کے عمل کے برابر پھر اس کا عمل ہو سکتا ہے، ادروائز کسی کا عمل میچ نہیں کر سکتا اس شخص کے عمل میں سے جو ان 10 دنوں میں نیکی کا کوئی کام کرے. یعنی اتنے زیادہ یہ اہم دن آ رہے ہیں، اور ان کی طرف خود بھی توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ دوسروں کو بھی کروانی ہے. ایک جگہ پہ میں نے جب اس وقت بھی یہی تقریباً ٹائم چل رہا تھا، تو جب لوگوں کو بتایا ان دنوں کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے آج تک ہمیں تو نہیں پتا تھا، اتنی زندگی گزر گئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن بھی کوئی اہم دن ہے، ہم تو رمضان کو ہی سمجھتے تھے. رمضان تو الحمدللہ لوگوں کے ہاں ایک یعنی چلا آ رہا ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ان دنوں کو لوگ کوئی زیادہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی خاص دن ہے. تو دیکھیں ان دنوں سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب. پورے ایئر میں آپ کسی ٹائم پہ بھی کوئی نیک عمل کریں گے نا، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا نہیں ہوگا جتنا کہ ان دنوں میں اگر آپ نے کیا ہوگا. تو اس لیے ان دنوں کو اہم سمجھنے، اور دیکھیں آپ ان دنوں کی جو اہمیت ہے وہ اس سے بھی لگائیں. والفجر وليال عشر، سورہ فجر میں آتا ہے نا، تو فجر سے مراد بھی عید الاضحیٰ کی فجر ہے، اور کئی جگہوں پہ تو یہ بھی ہے کہ 10 راتوں سے بھی مراد یہ ذی الحجہ کی ابتدائی جو شروع کی جو 10 راتیں ہیں یہ مراد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت میں تو یہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ये सहाबा जो थे ये यानी निकल जाया करते थे बाजारों में और 10 दिनों में, और बुलंद आवाज से तकबीरात कहते थे, तो सुनने वाले भी इनकी तकबीरात सुन के तकबीरात कहने लगते थे। इसका मतलब क्या है कि इन दिनों में तकबीरात बहुत ज्यादा आपने कहनी है, यानी आपका वजीफा समझ लें, आपका जिक्र समझ लें, वो ये तकबीरात है। अल्लाह हु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह हु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कथीरा, व सुबहानल्लाहि बुकरतुन व असीला। ये 10 डेज में चाहे आप घर में इनको बार बार प्ले करें और साथ साथ पढ़ें, ऊंची आवाज में इनको यानी उस पे लगा दें कंप्यूटर पे और आप साथ साथ पढ़ें, आप भी ऊंची आवाज में इनको पढ़ें, काम करते हुए, सफाई करते हुए और सफर करते हुए, जिस उसमें भी आप कंडीशन में हैं, आप ऊंची आवाज में तकबीरात बुलंद करती रहें। इसी तरह एक और भी तकबीर है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहू ला शरीक लहू, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो आप जो भी तकबीरात आप चाहें, आपने इन दिनों में इस चीज को मेक श्योर करना है कि आप बच्चों को भी कहें, खुद भी ये तकबीरात बुलंद करें। और जाहिर है कि जब इन दिनों से ज्यादा अहम यानी कोई दिन भी साल के नहीं है, तो इन दिनों में कोशिश करें कि पहले 9 दिन जो है वो खास तौर पे 9 जिलहज्जा का दिन ये आप रोजा रखें, क्योंकि हदीस में भी यौम अरफा का जो रोजा है वो 2 सालों के गुनाहों का कफारा कहा गया है, नहीं एक पिछले साल का और एक आइंदा आने वाले साल का, ये 2 सालों के गुनाहों का कफारा हो जाता है। तो पूरे 9 दिन आप कोशिश करें कि आप रोजा रखें। 10 को तो खैर ईद ही आ जाएगी ना, तो 10वें दिन आपका रोजा कैसा होगा? वो ये होगा कि आपने सुबह से नहीं कुछ खाना, जब ईद की नमाज पढ़ के आ जाए, कुर्बानी हो जाए आपकी तरफ से, तो फिर उसके बाद कुर्बानी के गोश्त से आप खाएं। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर कुछ लोगों ने दूसरे मुल्कों में दी हुई है या इस तरह से कुछ है उनका सिलसिला, तो ईद की नमाज पढ़ के आए और फिर आप इंशाल्लाह तआला अपना रोजा इफ्तार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह रोजा रखें इन दिनों में। अब देखें, सोचिए नेकी के काम के कौन कौन से मैं नेकी के काम इसमें कर सकती हूँ। तो रोजे की तो मैंने आपको अहमियत बता ही दी, फिर आप तकबीरात भी बुलंद करेंगे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, फिर आप तहज्जुद का एहतमाम करें इन दिनों में, खूब खूब इस्तगफार करें। अब ये याद रखिएगा कि हर नेकी का काम इस वक्त मेरे अल्लाह को इतना प्यारा है, क्योंकि ये दिन बहुत प्यारे हैं। क्योंकि देखिए ना, इन दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं ना, रमजान में तो रोजा ही होता है ना, तो इन दिनों में रोजा भी है, कुर्बानी भी है, हज भी हो रहा है, अरफा का दिन भी है। और अरफा का दिन तो इतना अहम है, इस कदर अहम है कि हदीस में कि बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन कही जाए। और अल्लाह ताला किसी और दिन इतने लोगों को जहन्नुम से आजाद नहीं करते जितने अरफा के दिन। नहीं, आप सोचें, वो लोग जो वहां पे गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हज के लिए जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उनके लिए तो अहम तरीन दिन है ही। अब जो नहीं जा सके तो फिर यानी वो इस दिन को अहम तो समझे ना, जहां पे भी बैठे हुए हैं। जाहिर है हर साल तो नहीं जा सकेंगे ना, तो अरफा के दिन खूब खूब इस्तगफार करनी है इंशाल्लाह। और बाकी भी ये 9 दिनों में तौबा इस्तगफार को यानी एक अपनी रूटीन में आपने लेकर आना है। और कुरान पाक की तिलावत ज्यादा बढ़ा दें, आपने सदका का एहतमाम करना है इंशाल्लाह। जो सदका करना है वो कोशिश करें कि इन दिनों में करें, और रिश्तेदारों के हकूक ज्यादा अदा करने की कोशिश करें। नवाफिल की भी आप जो आगे पीछे नहीं भी पढ़ते वो भी, क्योंकि नवाफिल कोई फर्ज नहीं है, ठीक है, तो जो आगे पीछे आप छोड़ भी देते हैं, स्किप कर देते हैं, कोई वो सुस्ती भी हो जाती है, लेकिन इन दिनों में जरूर आप एहतमाम करें कि मैंने नफल अदा करने हैं, हर नमाज के साथ अदा करें, ठीक है। तो नेकियों के जो भी काम करेंगे आप, कम या ज्यादा, देखें ज्यादा करेंगे ज्यादा पाएंगे, ज्यादा जो करेगा मिसकाला जर्रातिन खैर यरा, जो एक जर्रे के बराबर भी नेकी करेगा तो इंशाल्लाह वो भी उसको देख लेगा। अगर आपका किसी नेकी के करने का प्लान है तो कोशिश करें कि उसे उन दिनों में कर जाए, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि मैं 1-2 महीने में फलां काम करना चाहती हूँ, मतलब कोई सदके का काम है या किसी नाराज रिश्तेदार को साथ दोबारा ताल्लुक जोड़ने का कोई काम है, या इस तरह कोई भी नेकी का काम जिसको आपने अभी पेंडिंग छोड़ा हुआ है कि मैं देखूंगी मैं करूंगी, तो कोशिश करें कि उसको ऐसे प्लान करें कि आप इन 10 दिनों में कर लें, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो लोग हज पे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ वो तो ठीक है जा रहे हैं, मगर जो लोग यहाँ पे हैं तो हज का अजर इंशाल्लाह पा सकते हैं, अपने वालदैन की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखने से भी हज मकबूल का अजर मिलता है। इसी तरह जो इंसान, जो आदमी, जाहिर औरतों के ऊपर तो फर्ज नहीं है, मगर हदीस में आता है कि जो शख्स भी अपने घर से बावजू होके, घर से वजू करके, ठीक है मस्जिद जाके नहीं, घर से वजू करके फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के लिए निकलता है, उसको हज का एहराम बांधने वाले की बराबर सवाब मिलता है। तो जो लोग आगे पीछे नहीं भी जाते बाजमात नमाज के लिए, तो अगर हम पर तो देखें जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपने हस्बैंड को या बेटे को या भाई को भेजते हैं, उनके लिए इसमें आसानी करते हैं, उनको इसकी ताकीद करते हैं, तो देखिए हम भी तो अजर में शामिल हो गए ना। नेकी की तरफ का राह दिखाने वाले को भी उतना ही अजर मिलता है जितना नेकी करने वाले को। तो अगर आप उनको इसकी तरगीब देंगे, उनको ये बात सुना देंगे, उनको इस चीज की वजह से मे भी मोटिवेशन मिले, तो इंशाल्लाह आपको भी इस साथ ही अजर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको मालूम ही है कि 2 रकात आपने सिर्फ पढ़नी है, फजर की नमाज पढ़ के वहीं बैठे रहना, अल्लाह का जिक्र करते रहना, हत्ता के सूरज निकल आए, फिर सूरज निकल आया तो आपने 2 नफल नमाज पढ़ ली, तो आपको पूरे हज और उमरे का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। 2 नहीं 4 पढ़ना चाहते हैं 4 पढ़ने, 6 पढ़ना चाहते हैं 8 पढ़ना चाहते हैं, 8 तक पढ़ी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। और कुर्बानी के लिए इंशाल्लाह अभी से आप अपने लिए सोच लें कि आपने कुर्बानी किधर करनी है, यहाँ करनी है, इस दफा आपका यहाँ का है या कहीं और आपको करने का प्रोग्राम है, जहाँ पे भी है इंशाल्लाह उसके लिए अभी से यानी अरेंजमेंट करना पड़ता है ना, पैसे भिजवाने या कुछ है, तो उसके लिए अभी से प्लान करें। और ये देख लीजिएगा, पहले भी आपको बता चुकी हूँ क्योंकि अभी हमारी सूरह हज मुकम्मल हुई है, तो मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि अगर आपने किसी जगह भिजवानी है तो मेक श्योर करें कि आपका ईद का दिन और आपकी ईद की नमाज हो जाए, उसके बाद वहां पे कुर्बानी हो, ये ना हो कि आपकी ईद हुई ही नहीं है, कुर्बानी आपकी तरफ से पहले ही हो गई है। तो जरा प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जहां भी आपने करवानी है, जिसको भी आपने कहना है, अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं तो उन तक भी इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जगह तो पहले ही पता चल जाता है खैर कैलकुलेशन से कि इस दिन हम लोग ईद कर रहे हैं, तो जरा आप उनको बता सकते हैं कि उनके नेक्स्ट डे करें या जैसे भी। और जब आपका अगर इरादा है कुर्बानी करने का, और अगर आप ताकत नहीं रखते या आप कुर्बानी करने वाले हैं, तो फिर भी दोनों के लिए ये काम हो सकता है, तो जिलहज का जब चांद आप देख लें उसके बाद नाखून नहीं तराशने, और मर्द जो हैं वो मूंछों के बाल और जेर नाफ बाल साफ नहीं करें, ईद की नमाज के बाद फिर हिजामत कराएं, तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी का पूरा सवाब मिलेगा। जिसने कुर्बानी नहीं की उसको उसका पूरा सवाब मिल जाएगा, जो कुर्बानी कर रहा है उसके लिए भी अजर का बाइस है, मगर ये सुन्नत है, अब इसको ये नहीं, फर्ज नहीं बना दीजिएगा कि घर वाले तंग हो जाएं आपके उससे, सबको पहले ही बता दें, तो तराश लें पहले ही ये महीना स्टार्ट होने से पहले। देखिए जो भी कुर्बानी के जानवर पे आपका पैसा खर्च होता है ना, खुले दिल से खर्च करें, ये नहीं सर्च करें कि कौन सी जगह मैं यानी पैसे दूंगी तो वहां पे बकरा सस्ता आता है, और कौन सी जगह पे देखो वो तो इतने पैसे ले रहे हैं, और ठीक है क्योंकि आप अच्छा जानवर देना चाहते हैं ना, तो जो आप रुपया उसके लिए खर्च कर रहे हैं, जितने डॉलर खर्च करेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ सब पैसों से ज्यादा महबूब अफजल और आला, जो भी आप दूसरे तमाम कामों पे आपने लगाया उस सबसे ज्यादा है महबूब, सबसे ज्यादा अफजल है, सबसे ज्यादा आला है। ठीक है, तो ये भी आपकी तरफ से कुछ जाया नहीं हो रहे पैसे, और आपको 10-20 डॉलर ज्यादा भी खर्च करने पड़े तो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है ये, बजाय आप दूसरे नेकी कामों में जो खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको जैसे मालूम है कि जानवर को जिबा करने से पहले छुरी को तेज करना चाहिए और उसके सामने नहीं करनी चाहिए अगर आप खुद कर रहे हैं कुर्बानी तो, और ये भी आपकी जस्ट मालूमात के लिए बता रही हूँ कि जो जानवर बहुत दुबला पतला हो, चलने के काबिल नहीं हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, या जिसके सींग टूटे हों, मतलब यानी डिफेक्टिव जानवर समझ लें, उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। याद रखिए अल्लाह के रास्ते में आप देते हैं, अच्छा जानवर दें, ऐबदार जानवर ना दें। ठीक है, और थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी मैं बयान कर दूं कि अपने हाथ से कुर्बानी करना जो है ना वो अफजल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फिर आपको थोड़ा सा तरीका भी आना चाहिए, यानी मर्दों को मैं कह रही हूँ, खैर औरत भी अपने हाथ से कुर्बानी कर सकती है, क्योंकि इसके बारे में भी बुखारी के अंदर एक रिवायत मिलती है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हजरत अबू मूसा अशरी, तो उन्होंने अपनी बेटियों को उनकी कुर्बानी के जानवरों को खुद अपने हाथ से ज़िबह करने का हुक्म दिया था, तो कर सकती है, मगर जाहिर सी बात है अगर किसी औरत में हिम्मत है इतना, मतलब कर सकती है, उसको तरीका आता है और करना चाहती है तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि औरतें कुर्बानी नहीं कर सकती, वो ज़िबा नहीं कर सकती, ये कुछ भी नहीं, इस हदीस से, ये बुखारी की हदीस है और इससे हमें ये पता चल गया कि औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं, यानी कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि कुर्बानी सारे घर की तरफ से एक की जाए या हर कोई अलग अलग करे, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, तो बात ये है कि देखें एक आपको मिसाल देती हूँ इस सिलसिले में, आप किसी के यहाँ मसलन तोहफा ले जाना चाहते हैं, तो जो आपके दूर पार के होते हैं तो आप पूरी फैमिली की तरफ से एक तोहफा दे देते हैं, तो जो जितने करीब होता है, जो जितना ज्यादा प्यारा होता है, तो आप क्या करते हैं फिर, ये हस्बैंड की तरफ से, ये मेरी अपनी तरफ से, ये मेरे फलां बच्चे की तरफ से, ये फलां बच्चे की तरफ से, हर बच्चे ने आपको अलग अलग अपनी तरफ से तोहफा भेजा है ना, यही होता है ना, तो समझ लें इसको भी इसी तरह एक तोहफा समझ लें कि अल्लाह के रास्ते में जो कुर्बान आपने जानवर किया है, सभी एक जानवर कर लें तो भी ठीक है, लेकिन आपकी मोहब्बत है, आपका जज्बा है, आप ज्यादा नेकी लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे भी हैं, कोई जमा हुए हुए हैं, ईदियाँ आपके पास पड़ी हुई हैं, या आपके पास वैसे भी औरतों के पास होती है अपनी बचत की होती है, आप कहती हैं मैं और ज्यादा अजर लूँ, आप अपनी तरफ से पूरा ही बकरा कर देती हैं, जाहिर है ज्यादा अजर मिलेगा, और ऐसे भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम सब एक एक बकरे को कहें कि ये मेरे हस्बैंड की तरफ से, ये मेरी तरफ से, ये मेरे बेटे की तरफ से, हर बकरे के ऊपर कह दें ये हम सब की तरफ से, दूसरा भी ये हम सब की तरफ से, तीसरा भी ये हम सब की तरफ से, तो आपके तीन में हिस्से पड़ गए। ठीक है, इसको भी उलमा कहते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखिए जब हम सबके पास कुछ ना कुछ जमा पूंजी होती है तो क्यों ना, इतने ज्यादा महंगा तो नहीं आता ना बकरा, यहाँ के लिहाज से तो 125-150 डॉलर तक में आपके लिए आराम से एक बकरे का इंतजाम आप कर सकती हैं, तो क्यों ना करें। ठीक, तो देखिए अब कुर्बानी के जानवर जो हैं, ईद के दिन जो है इंसान को कोई अमल भी, कोई भी आप अमल कर लेना, वो कुर्बानी से ज्यादा पसंदीदा नहीं है अल्लाह ताला को, इतना पसंद है, हर जानवर जो है ना वो कयामत के दिन अपने सींगों, खुरों, बालों समेत इंसान की नेकियों में पेश किया जाएगा, और उस जानवर के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ पहुंच जाता है। तो हमें अच्छे दिल के साथ कुर्बानियां करनी चाहिए, बोझ समझ के नहीं करनी चाहिए। और आप अगर किसी को सदका देना चाहते हैं, कोई और चीज देना चाहते हैं, इसी खर्च का फजल अल्लाह के नजदीक बनिस्बित उस खर्च के जो बकरा ईद वाले दिन की कुर्बानी पर किया जाए हरगिज अफजल नहीं। ये हदीस है, यानी कुर्बानी के ऊपर जो आप खर्च करेंगे ना उस दिन, वो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है इस दिन बकरा ईद के दिन, बजाय किसी और खर्च करने के। आपने किसी को फकीर को दिया, किसी मोहताज को दिया, किसी को खाना खिला दिया, वो ठीक है, अगर आप कुर्बानी नहीं कर सकते तो आप जितनी भी नेकियां करें अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुर्बानी कर सकते हैं तो इस दिन अल्लाह को आपकी कुर्बानी करना ज्यादा पसंदीदा है बजाय कोई भी और अमल करने के सदके का। ठीक है, तो ये ना कहें कि कुर्बानी के पैसे मैं गरीब को दे दूंगी, ये कर दूंगी, ये ना कहें, ठीक है, बल्कि इसकी जगह पे कुर्बानी करें, वो सबसे अफजल है। और सुन्नत इब्राहिमी भी है। तो और इस दफा इंशाल्लाह जब कुर्बानी करें तो जहन में जरा ये भी रखिएगा कि मैं ये तो ये जानवर कुर्बान कर रही हूं ना, मैं अल्लाह की खातिर अपना सब कुछ भी कुर्बान कर सकती, और मुंह से भी बोले कि अल्लाह मेरा सब कुछ तेरी खातिर है, इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी ये कुर्बानी भी, व माहिया या व ममाती, और मेरा जीना भी और मेरा मरना भी, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। ये जहन में रख के इस दफा कुर्बानी करिएगा, और ये एडमिट करना बड़ा मुश्किल होता है कि अल्लाह मैं तेरी खातिर सब कुछ दे सकती, और जरा सच्चे दिल से ये सोच के कहिएगा मैं अपनी कोई ख्वाहिश भी कुर्बान कर सकती हूँ, मैं अपनी कोई मर्जी भी कुर्बान कर सकती हूँ। इस दफा सोच लीजिएगा कि अपनी किसी पसंद, किसी ख्वाहिश, किसी मर्जी जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मैं करती हूँ, क्या मैं उसके ऊपर भी छुरी चला सकती हूँ? सिर्फ जानवर पे ही नहीं, क्या मैं अपनी उस ख्वाहिश पे जो मेरी तो ख्वाहिश है लेकिन अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और मुझे पता है कि उसको नहीं है पसंद, तो मैं क्या उसको भी ज़िबा कर सकती हूँ? और याद रखिएगा, कुर्बानी करके इत्मीनान नहीं कर लीजिएगा, दुआ जरूर आपने करनी है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल कर लेना। देखें हाबिल काबिल ने कुर्बानी की थी ना, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, नीयत का फर्क पड़ जाता है ना, इसलिए नीयत में इखलास होना जरूरी है। कुर्बानी करके भी डरते रहिएगा, दुआ करते रहिएगा, अल्लाह पाक अपने यहां कबूल भी कर लीजिए। और जो भी कुर्बानी कर सकता है फिर भी नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, यानी इतना उसके ऊपर गुस्से हुए थे, तो इन्होंने हमारी सवारियां बनना है पुल से रात पे। अच्छे जानवरों की कुर्बानियां करें, और हम औरतों को तो बहुत ज्यादा, यानी जितना हम अपने हाथ से, मैं तो कहती हूँ जितना भी निकाल सकते हैं ना, हमें तो जरूर ही निकालना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको पता है ना औरतें ज्यादा होंगी जहन्नुम में, ज्यादा तादाद में होंगी मर्दों से ज्यादा, और अल्लाह ताला माफ फरमाए। अब हमारे पास बजाय आपने जोड़ जोड़ के रखे हुए हैं, पता नहीं किस दिन के लिए, मुझे तो समझ नहीं आती, हम जोड़ते रहते हैं ना उसको, पैसों को, कौन से वो दिन आएगा जिस दिन हमने खर्च करने हैं। इस दफा कुर्बानी में खर्च करें, और इंशाल्लाह इन बातों को जहन में रख के खर्च करिएगा, और कोशिश करिएगा कि इन 9 दिनों में अपनी जुबान की भी हिफाजत करें। ऐसा कोई काम नहीं हमने इंशाल्लाह करना, बाकी दिनों में भी नहीं करना, लेकिन मतलब ये है कि इन दिनों में खास तौर पे अल्लाह की नाराजगी का कोई काम ना करें, क्योंकि देखें नेकियां तो हमने करनी है लेकिन साथ गुनाहों से बचना भी तो है ना, ताकि ये ना हमारी नेकियां ही, हम साथ साथ उधर नेकी कर रहे हैं, साथ साथ गुनाह कर करके उसको मिटाते भी जा रहे हैं, तो ऐसा ना कहीं हो जाए ना। तो हो इंशाल्लाह, और शुक्रगुजारी करनी है बहुत ज्यादा इन दिनों में, बहुत ज्यादा, अगर आप कुर्बानी कर रही हैं इस पे भी शुक्रगुजारी करें कि अल्लाह मुझे तूने इतनी तौफीक दी है, इस्लाम की नेमत की शुक्रगुजारी करें, अपने वजूद की शुक्रगुजारी करें, इस ज़िंदगी पे शुक्रगुजारी करें, जो कुरान की नेमत आपको मिली है इस पे शुक्रगुजारी करें। ये तो मुख्तसर मैंने आपको ज़िलहज के थोड़े से मसाइल बयान किए हैं। इलाही ना कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुसलसल आपने हस्बी अल्लाह व निअमल वकील ये पढ़ना। ये किस वक्त पढ़ा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आग में फेंके जाने लगे थे ना, तो अल्लाह ताला ने उनको कैसे बचा लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम ने किस वक्त पढ़ा था? जब दुश्मन हमलावर होने लगा था। हज़रत बीबी हाजरा ने किस वक्त पढ़ा था? जिस वक्त के इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के जा रहे थे और तन्हा रह गई थी। तो कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात है ना ये, जो उनके ऊपर आई और उसके ऊपर उन्होंने ये कलमा पढ़ा। तो हम में से तो किसी को भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, आफियत में रखे। आग में फेंकने जाने या बिल्कुल तन्हा छोड़े जाने या ऐसा दुश्मन के ऐसा ख़तरा नहीं है। हमारी तो मुसीबतें या मुश्किलात या तकलीफ़ें इससे बहुत कम कैलिबर की हैं। तो उस पे तो और भी ज़्यादा, यानी आपको उन्होंने इतनी बड़ी बातों पे पढ़ा, तो हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में भी क्या करना चाहिए? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील यही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने इस को दुआ के तौर पे अपने इंशाल्लाह पढ़ना है कोई भी मुश्किल आए तो। और आज की दुआ जो है वो दुआ भी मुख्तसर सी है लेकिन बहुत अच्छी दुआ है, और आपको हर वक्त ही मांगनी चाहिए, हर रोज ही मांगनी चाहिए। यानी 3 दफ़ा, 3 टाइम्स, सुबह को भी और 3 टाइम्स शाम को। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाह मेरे बदन को आफियत में रखना, तंदुरुस्त रखना, खैर से रखना। अल्लाहुम्मा आफिनी फी समाई, ए अल्लाह मेरी समात को, मेरे कानों को आफियत से रख। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाह मेरी बसारत को आफियत में रख। ला इलाह इल्ला अंत, आपके सिवा कोई इलाह नहीं है। तो आज जो बीमारियाँ इतनी यानी कसरत से हम इधर उधर सुनते भी हैं, और हर वक्त ये फिक्र रहती है कि पता नहीं अल्लाह जानता है कि हमारे जिस्म में क्या हो रहा है, और पता नहीं हम किस उससे अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि अगला दिन हमारे ऊपर क्या आने वाला है। तो जो ज़िंदगी भी है, हर एक की ये ख्वाहिश है कि जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे थोड़ी ज़िंदगी रह गई हो, लेकिन अल्लाह ताला सेहत के साथ गुजरे, आफियत देना। तो ये इस सिलसिले के में आपके लिए बहुत अच्छी दुआ है। आपने पूरी अपने जिस्म के लिए भी आफियत मांग ली, अपनी समात के लिए, अपनी अपनी बसारत के लिए भी। ठीक है, अस्माए हुस्ना में अज़ाहिरुल बातिन, अल्लाह ताला जाहिर भी है और बातिन भी है, यानी जो सारे जाहिरों से बढ़ के जाहिर, कोई दुनिया में चीज उसके लिए छुपी है ही नहीं। ठीक है, हर चीज सबसे बढ़कर जाहिर, और फिर ये भी कि दुनिया में जो कुछ भी है वो उसके जहूर का पता दे रहा है कि अल्लाह है, सबसे बढ़ के जाहिर, यानी उससे इससे वो तो छुपा हुआ है ही नहीं। तो हर चीज में अल्लाह ताला हमें दिखता है, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी तखलीक, उसका यानी हर चीज में हमें नजर आ रहा है। फूल देखें, फल देखें, पौधे देखें, कोई जानवर देखें, आसमान देखें, जमीन देखें, चरिंद परिंद देखें, तो सब में हमें क्या वो जाहिर है। यानी इसका मतलब है ये नहीं कि अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह ये नहीं कह रही कि अपनी जात के तौर पे उसमें मौजूद है, इस चीज को क्लियर करिएगा, बल्कि क्या है, अल्लाह ताला हर चीज में नजर आ रहा है, यानी उसकी कुदरत नजर आ रही है, उसकी ताकत नजर आ रही है, वो कैसा पैदा करने वाला ये नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि इनका कोई बनाने वाला है, तो वो जाहिर है। और अलबातिन, और उससे ज्यादा छुपा हुआ भी कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल देखिए ऑपोजिट सिफात है, लेकिन दोनों ही अल्लाह ताला की सिफात है कि हर छुपे हुए से बढ़ के छुपा हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, ना आप उसको छू के महसूस कर सकते हैं। वो महसूस करना तो दूर की बात है, छू के अक्ल की कि अंदर भी नहीं आ सकती उसकी जात। ठीक है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी है ना कि अंतल अव्वल फलैस कबलक शै व अंतल आखिर फलैस बादक शै व अंतल जाहिर फलैस फौकक शै व अंतल बातिन फलैस दूनक शै। अल्लाह तू ही पहला है, कोई तुझसे पहले नहीं है, तू ही आखिर है, कोई तेरे बाद नहीं है, तू ही जाहिर है, कोई तुझसे ऊपर नहीं है, तू ही बातिन है, कोई तुझसे ज्यादा छुपा हुआ नहीं है। ये इमाम अहमद ने भी इसको अपनी मुस्नद अहमद में किया है मेंशन, और मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, बेहकी में भी है। तो आप देख सकते हैं हाफिज़ अबू याला ने भी अपनी मुस्नद में इसको लिखा। अच्छा, और आप तफहीमुल कुरान में भी देख सकते हैं, अगर आपके पास तफहीमुल कुरान है, सूरह हदीद की हाशिए में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत प्यारी ये दुआ है ये, और इसमें ये सारे ही नाम आ जाते हैं, अव्वल और आखिर और जाहिर और बातिन। जितने अगर आपको नहीं भी आती है, आप कम अज़ कम उर्दू में तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह तू ही पहला है, तेरे से पहले कोई है ही नहीं, तू ही आखिर है, तेरे बाद भी कोई नहीं है, तू ही जाहिर है, तुझसे ऊपर कोई नहीं, तू ही बातिन है, तुझसे ज़्यादा छुपा हुआ भी कोई नहीं। ठीक है, इस दफा का आपका जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा कलमा नहीं है, बोलने में तो मैंने एक सेकेंड से भी जल्दी शायद बोल दिया, छोटा नहीं है कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से जब कहा है ना, पता है क्या मिला, जानते हैं, जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह है, कितनी जगह है? इसको फिल करने लगे, किसी चीज से फिल कर सकते हैं, कितनी स्पेस है ये, पहाड़ों से फिल करें, मकानों से फिल करें, चीज़ों से फिल करें, चलो कोई किसी चीज़ से भी, फालतू चीज़ों से भी फिल करें, नहीं, ज़मीन से आसमान तक कोई ढेरी नहीं लग सकती, इस स्पेस को नहीं कोई चीज़ फिल कर सकती। लेकिन एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी स्पेस है, जो फिज़ा है, जितनी जगह है, इस सब को नेकियों से भर देता है। तो छोटा ना समझिएगा, ठीक है, अपना तकिया कलाम ही बना ले, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है ना, इंशाल्लाह। तो जब आपके यानी जुबान का एक नॉर्म बन जाएगा, रूटीन बन जाएगी, तो बोलना उसको मुश्किल भी नहीं लगेगा, है ना, तो याद भी नहीं रखना मुश्किल रहेगा, क्योंकि हर वक्त शौरी या गैर शौरी तौर पे आपके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलेगा। फिर तकलीफ भी पहुंचेगी तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी बात आज आपके साथ। थोड़ी सी देर और ले लेती हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो वैसे शेयर कर लेती हूँ। मुझे इससे याद आ गई बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफ़र पे गए थे, तो उस वक़्त जब लोगों ने पत्थर मारे और जूते लहू लहान हो गए, इस कदर मुश्किल दिन था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उस वो कि आयशा ने जब पूछा था कि आपके लिए सबसे मुश्किल दिन कौन सा था, तो आपने फरमाया वो ताइफ का दिन था सबसे मुश्किल, जब तेरी कौम ने मेरे साथ ये सलूक किया, तो इतना ज़्यादा मुश्किल दिन था, क्योंकि मक्का में भी कोई सपोर्ट नहीं थी, और वहाँ पे भी गए कि चलो इनसे कहूँ कि ये ईमान ले आए और कुछ साथ सपोर्ट हो जाएगी, तो वो उन्होंने भी ये रिस्पॉन्स दिया कि अपने बच्चों को पीछे लगा दिया, कई ऐसे औबाश नौजवान थे वो पीछे लग गए और पत्थर मार रहे हैं, और मुंह से जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं और बुरे बुरे बातें कर रहे हैं। तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं पता है, ए अल्लाह अगर तू इस पे मुझसे नाराज नहीं है, तू राजी है, तो या अल्लाह इस वक्त में मैं भी राजी हूँ, इतने पत्थर खाने के बाद और इतनी बातें सुनने के बाद, इसके बाद भी बस तू ना मुझसे नाराज हो, तू नहीं मुझसे नाराज तो मुझे किसी की नहीं परवाह। तो ये बात है कि सबसे ज्यादा यही यानी एक फिक्र भी होनी चाहिए, और एक कोई तकलीफ आए तो यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला तू नहीं नाराज है ना, तू राजी है ना, तो फिर मुझे कोई भी तकलीफ तकलीफ है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है फिर, ठीक है, फिर सभी चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीफ भी पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह, पत्थर भी खाए तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई बीमारी भी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तू मेरे से राजी है ना इसमें, अगर मुझे फिर कोई फिक्र नहीं, पर अगर अल्लाह तूने अब मुझे छोड़ दिया ना, तो सारी परेशानी तब है, सारी फिक्र तब है। तो एज लॉन्ग एज तू राजी है मुझसे, फिर सब चीजें आसान है। तो तकलीफ भी आए तो फिर इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब की रजा इसी में है, वो खुश है अगर मेरे ऊपर ये भेज के तो मैं भी खुश हूं, मैं भी राजी हूं, बस वो ना नाराज हो। तकलीफ क्या चीज है, ये भी बर्दाश्त कर लूंगी उसकी खातिर, वो जो खुश है इसको दे के मुझे, और आसानियां हो तो फिर तो जाहिर ही बात है कि शुक्राने के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही कहना है, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला करे कि आज का सेशन हमारे लिए मुफीद साबित हो, हमारे अमल में अल्लाह ताला इसको शामिल फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें हमारे जो तरीके बचपन से चले आ रहे हैं और हम उन पे जिद्दी हुए पड़े हैं, स्टबन हुए में, और उनको छोड़ने को तैयार नहीं है और अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह ताला हमें उनको बदलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला वही काम हमसे ले जिनसे वो राजी होता हो, और अल्लाह ताला ऐसे ही कामों में हमको लगा दे जिसमें उसकी खुशी हो, और हम हर दम अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर सांस के साथ हो, तो हम अल्लाह तेरा हक नहीं अदा कर सकते कि तूने हमारी जो सांस चला दी है और जो हमें आफियत दी हुई है, अल्लाह ताला हम तेरा हक नहीं अदा कर सकते, तो हर सांस पे अल्हम्दुलिल्लाह, हर सांस पे हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हर सांस पे हम तेरी तारीफ करते हैं, हम चाहें भी तो तेरे हकूक नहीं अदा कर सकते। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।